सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सयलिन्दविन्दवन्द्य महिनन्दिय भौवपौमवणसण्डम् अहिनन्दनजिननाहं णमिऊण उवक्कमं वोच्छम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धोला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 15वीं पुस्तक में जो शेष 18 अनुयोग द्वारों की चर्चा भी यहाँ चल रही है, उसमें से निबंध अनुयोग द्वार और प्रक्रम अनुयोग द्वार के पश्चात उपक्रम अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 60 पर आ गए, 60। उदीर्णा की बात हो रही है। उपक्रम का अर्थ होता है बंधने के बाद दूसरे समय से लेकर सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसमें क्या क्या अवस्थाएं होती है उसकी बात यहाँ चल रही है। उसमें उदीर्णा के प्रकरण में हमने पहले मूल प्रकृति की देखी थी, एक एक प्रकृति की उदीर्णा कहाँ से कहाँ तक होती है। फिर प्रकृति के स्थान देखे थे, 8 वाले, 7 वाले, 6 वाले, 5 वाले और 2 वाले। अभी उत्तर प्रकृतियों की बात चल रही है। ये मूल में बात समझना, जहाँ उदय है वही उदीर्णा कहेंगे हम। जिस प्रकृति का उदय नहीं हो रहा है, क्योंकि उदयावली देने को ही हम उदीर्णा कहते हैं। उदयावली के बाहर के जो परमाणु हैं वो अपकर्षण द्वारा उदयावली में आ मिलते हैं तो उसको उदीर्णा कहलाती है, उसको उदीर्णा कहते हैं हम। तो यहाँ हम बहुत सारे उत्तर प्रकृतियों की बात देखते देखते 60 पेज पर आए हम, 60 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन सुभग वहां से शुरू करेंगे। सुभग और आदेय, पहले हम देखते हैं सुभग और आदेय जो कर्म है उनका उदय कहां तक है, सुभग और आदेय का उदय कहां तक पाया जाता है। कल हमने देखा था ना, हाँ, 14वें तक। सुभग और आदेय, सुभग और आदेय यशकीर्ति ये जो है ना वो 14वें तक है, उदीर्णा 13वें, क्योंकि 13वें में सभी प्रकार के उदीर्णा की विच्छित्ति होती है। हम अभी पढ़ेंगे सुभग और आदेय की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि अन्यतर गर्भोपक्रांत संगी, अन्यतर यानी कोई भी, गर्भोपक्रांत यानी गर्भज, संगी व असंगी जीव उसकी उदीर्णा करते हैं, यानी असंगियों के इनका उदय नहीं है ये बात। असंगी नहीं, नीचे वाले गर्भज छोड़कर जो अन्य सम्मूर्छन आदि जो है एक इंद्रिय आदि जीव है उनमें यह प्रकृति नहीं पाई जाएगी। तथा देव व देवियां संयता संयत एवं संयत जीव नियम से उसकी उदीर्णा करते हैं। ऐसा क्यों कहा? सुभग और आदेय की उदीर्णा नियम से करने वाले कौन है? संयमा संयमी है और संयत है, गुणस्थानों की जो कंडीशन डाली है। अभी इस पर तो ख्याल में आया होगा क्योंकि उसके उदय की विच्छित्ति कल हमने 4थे गुणस्थान की उदय की विच्छित्ति देखी थी, दुर्भग अनादेय और अयशस कीर्ति देखा था उसमें। तो वहां तक तो ऑप्शनल होगा ये संगी जीवों के लिए भी, परंतु उसके बाद तो सुभग और आदेय का ही उदय है और उन्हीं की उदीर्णा चलेगी। वैसे ही देवों में ये सुभग और आदेय का ही उदय पाया जाता है, उनके दुर्भग अनादेय का उदय नहीं पाया जाता, इसलिए देव और देवियां भी इसी की उदीर्णा करते हैं। दुर्भग व अनादेय की उदीर्णा, अभी इसके अगेंस्ट इसको भी देखेंगे ना, अभी कहां तक हो सकती है, अभी हमने देखा था ना 4थे तक है उसकी उदीर्णा। दुर्भग व अनादय की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक होती है। सुस्वर और दुस्वर की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है, क्योंकि सुस्वर दुस्वर का उदय तेरहवें वाले को भी है, वहाँ उसकी उदय की विच्छित्ति होती है। इसमें कौन कौन से जीवों को होगा, एक इंद्रियों को होगा कि नहीं होगा, उदीर्णा होगी कि नहीं सुस्वर की, उनके उदय ही नहीं है तो ये सवाल नहीं होता। अब जो सुस्वर दुस्वर नाम कर्म का बराबर है ना, उनके ना वचन है, वचन तो द्विइंद्रिय से ही पाया जाता है। देखो क्या कहना चाहते, दुर्भग व अनादेय की उदीर्ण मिथ्या दृष्टि से लेकर, ये हुआ था सुस्वर की बात कर रहे थे। तो सुस्वर का दुस्वर का उदय कहाँ से होता है, कहाँ से ने हमने देखा था गुणस्थान में नहीं बोले, नाम कर्म के जो उदय का उदय के अलग अलग काल है, तो सुस्वर दुस्वर का उदय भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद उसका उदय होगा। काल में भाषा पर्याप्ति काल में, वो पूरा काल उसका मरण तक कहलाता है। सुस्वर और दुस्वर की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। विशेष इतना है कि द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त होकर ही उनकी उदीर्णा करता है। पर्याप्त होने के पश्चात ही उसका उदय भी वहाँ शुरू होता है और बाद में ही उसकी उदीर्णा होगी। और देखो यहाँ अंतिम समय तक कहा है तेरवे के, क्योंकि वो सत्ता में से नहीं जाती, उदय की विच्छित्ति हुई है सत्ता में पड़ेगी पड़ी रहेगी, इसलिए उसका आवली काल वो नहीं गिनाया वहां पर। तीर्थंकरों में तो सभी शुभ प्रकृतियां ही होगी, सुस्वर ही होगा, फिर भी उनमें वो स्थिर अस्थिर वो भी चलेगी उनमें। बाद में सत्ता है क्योंकि क्षय नहीं होता है वहां पर, तेरहवें गुणस्थान के अंत में एक भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। चौदहवें में जाते हैं तो 85 प्रकृतियों में से 12 ही उदय रूप रहती है, बाकी तो सत्ता में पड़ी रहती है, और उसमें से 75 का तो क्षय उपांत समय में होता है, यानी क्षय होने का कार्य संयोगी में होता ही नहीं है। कर्म जो हम क्षय करना कहते हैं, कहाँ पर होता है कर्मों का क्षय, कोई भी सभी जो इतनी सारी प्रकृतियां देखी हमने, क्षय का कार्य कहाँ होता है, हाँ अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी के तीन, वो तो चौथे से सातवें तक कहीं भी हो सकता है। हाँ बराबर, हाँ सभी कषायों का अब क्या कहते हैं, देखो मैक्सिमम क्षय का कार्य तो नौवे में होता है, हाँ वहाँ तो अप्रत्याख्यान जाते हुए 8 कषाय चले जाते हैं, वो बहुत सारे उसमें चले जाते हैं, वेद वगैरह वो सब उस क्षय होते होते ऊपर चढ़ता है। एक सूक्ष्म लोभ रहता है, उसका क्षय दसवें के अंत में होता है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय जो है तो 12वें के अंत में होता है। एक क्षय की बात चल रही, अभी यहाँ इसका क्षय नहीं हो रहा है, सुस्वर दुस्वर का उदय मिट जाएगा, सत्ता में पड़े रहेंगे उस वहाँ बिल्कुल उदय नहीं है चौदहवें वाले को, फिर भी उसका क्षय कब होगा, उपांत समय में होगा। हाँ 85 जाएगी, 72 और 13 हो जाते हैं, 72 और 13, क्योंकि वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी उदय रूप नहीं है, फिर भी वो अंधे समय में चली जाती, इसलिए 13 कहा वहां पर। तीर्थंकर नाम कर्म का उदीरक जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, ऐसा सहयोगी तीर्थंकर ही होता है। तीर्थंकर नाम कर्म का उदय कहाँ है, कहाँ तक, हाँ 14वें के अंत तक, उदय तो 14वें के अंत तक है, परंतु 14वें में हमने देखा एक एक निशे खेरेगा वहां कोई उदीर्णा वगैरह का कार्य नहीं होता। उच्च गोत्र की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली के अंतिम समय तक होती है। यहां भी ऐसा ही समझना, उच्च गोत्र का उदय तो है 14वें वाले को परंतु उदीर्णा नहीं है। विशेष इतना है कि मनुष्य और मनुष्यनी उसकी कदाचित उदीर्णा करते हैं। कदाचित उदीर्णा क्यों कहा? हाँ, वो उच्च और नीच गोत्र के उसमें ऑप्शन होता है। देव देवी तथा संयत जीव उसकी उदीर्णा नियम से करते हैं। संयता निमनी राज जो है संयता संयत तक, क्योंकि वो नीच गोत्र जो तीर्यंच जो है संयता संयत वाले, उनके तो नियम से नीच गोत्र पाया जाता है, इसलिए वहां तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों ऑप्शन हो गए। देखो फिर पढ़ते हैं, देव देवी तथा संयत जी उसकी उदीर्णा नियम से करते हैं क्योंकि उनके तो उच्च गोत्र का ही उदय है। नारकी तीर्यंच को नीच गोत्र का ही उदय है और मनुष्य में दोनों ही हो सकते हैं। देखो संयता संयत जीव कदाचित उदीर्णा करते, कदाचित क्यों कहा? हाँ ऑप्शन है, क्योंकि तीर्यंचों में तो नीच गोत्र वाले होते हैं सभी तीर्यंच। नीच गोत्र की उदीर्णा मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत गुणस्थान तक होती है। गुणस्थानों की भाषा में कहना तो पहले से पांचवे तक। विशेष इतना है कि देवों में उसकी उदीर्णा संभव नहीं है। पहले से चौथे तक जो देव है उनमें उदीर्णा नहीं होगी। देवों के तो हमेशा ही उच्च गोत्र का ही उदय रहता है। तीर्यंच और नारकियों में उसकी उदीर्णा नियम से यानी उनके तो उसकी का उदय और उसी की उदीर्णा होगी, और मनुष्यों में कदाचित होती है। हाँ उच्च और नीच दोनों ही पाए जाते हैं इसलिए कदाचित कहा। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। एक जीव की अपेक्षा काल, ये उदीर्णा का काल कितना होगा उसकी बात चल रही। आभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय का उदीरक यानी मति ज्ञानावरणीय क्या, ये नीरस्व चाहिए ना आभिनिबोधिक में, आभिनिबोधिक हाँ नीरस्व रहता है उसका हमेशा। आभिनिबोधिक ज्ञानावरणी का उदीरक अनादि अपर्यवसित और अनादि सपर्यवसित जीव है। ये कैसे होगा? पर्यवसान ने अंत, अनादि अनंत, किसको? अभव्य में। हाँ अभव्य में अनादि अनंत, क्योंकि उसके तो कभी 12वें गुणस्थान प्राप्त नहीं होने वाला। और ये अनादि सपर्यवसित शांत जो कहा है, हाँ तो 12वें में जो पहुंच गया, 12वें के अंत एकावली काल पहले ही उसकी उदीर्णा रुक जाती है, वो अनादि शांत कहलाया। इसी प्रकार से शेष चार ज्ञानावरणीय, पांचों का ही उदीरक वो एक एट ए टाइम रहता है, उदय भी चलता है उदीर्णा भी चलती है। चार दर्शनावरणीय तेजस कार्मण अनादि से ही हर समय चलता है इनका। तेजस कार्मण शरीर यानी शरीर नाम कर्म की बात है। वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ और निर्माण और पांच अंतराय, इन सब का अनादि से हर समय उदीर्णा उदय चल रहा है। क्यों? क्योंकि इन प्रकृतियों के यानी ध्रुवोदयी प्रकृतियों ध्रुव उदय अनादि से ही चला आ रहा है। जब तक उसके उदीर्णा के उदय की विच्छित्ति नहीं होती है तब तक उसका उदय होता ही रहता है, उसको कहते हैं ध्रुवोदयी। पांच ज्ञानावरण का उदय तो हर समय चलता है, चार दर्शनावरण का हर समय चलता है, निद्रा को नहीं लिया क्योंकि निद्रा का उदय कभी कभी होता है, ऑप्शनल है ना वो। जब निद्रा का उदय है तब भी इन चार का तो उदय रहता ही है, ऐसा नहीं कि निद्रा का उदय हो तब इनका उदय नहीं होगा और इनका उदय तो उसका नहीं होगा। हाँ उनकी जो उसका उदय भी होगा और उदीर्णा भी होगी, उदय के काल में उदीर्णा भी होगी।
अभी तो अपना निरंतर उदय तो चल
रहा है। नहीं निद्रा का उदय नहीं है, निद्रा कर्म का उदय नहीं है। उदय हो जावे तो जागृत अवस्था नष्ट हो जाएगी। हाँ तब उसकी उदीर्णा चलती है। उदीर्णा में थोड़े परमाणु ऊपर से भी झड़ते आते हैं, नीचे हम झटकते कुछ तो नीचे गिरता है, मान लो ऐसा। तो ये जो सारी है वो ध्रुवोदयी है। हाँ, अभी उदीर्णा कितनी ज्यादा होती है, फिर भी कौन से प्रकृति की होगी उस पर है, स्थान वृद्धि की है क्या निद्रा निद्रा की है उसकी बात है। हाँ, ज्यादा परमाणु पर नहीं कुछ, वो उनके जो क्वालिटी कौन सी है। हाँ, क्वालिटी देखो, ये ध्रुवोदय में हमने किसको देखा, ज्ञानावरण के सभी लिए, दर्शनावरण में चार देखे और फिर अंतराय भी सब लिए और बाकी ये नाम कर्म के बाकी लिए। हाँ, तेजस कारमान शरीर है, ये नाम कर्म की बात है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ और निर्माण, अंतराय को देखा था हमने। ये ध्रुवोदयी है, ये सभी ध्रुवोदयी है, हर समय रहेगी, यानी विग्रह गति में भी इनका विग्रह उदय चलेगा। हमने जो 20 हमें जो 20 गुण गिनी थी वो नाम कर्म की 20 गिनी थी, उसकी बात या नहीं। हाँ, मति ज्ञानावरण 5 है ना, देखो 5 ज्ञानावरण 5 अंतराय 10 हुए, 4 दर्शनावरण 14 हो गए, तेजस कारमान 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये 26 हुए प्रकृतियां। वो 4 ज्ञानावरण मत लेना, 5 लेना। हाँ, अब बाकी जो है उसकी चर्चा करेंगे। निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय है, क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं, ऑप्शनल होती है ना, अध्रुव है। उनकी उदीर्णा का काल उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है, अंतर्मूर्त में वो बदल जाएगी, वो निद्रा 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 हो जाएगी, प्रचला हो जाएगी या जागृत अवस्था हो जाएगी, जो कुछ है एक एक अंतर्मूर्त तक उसका रहेगा उदय। इसी प्रकार से निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के उदीर्णा काल कथन करना, काल का कथन करना चाहिए। साता वेदिनी की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास है। अब ये ऑप्शन है ना, कभी साता का होगा कभी असाता का होगा, तो साता का एक समय में होकर फिर नष्ट हो जाएगा, असाता का हो सकता है और अधिक से। हाँ, और लगातार चलता रहे साता का तो 6 महीना होगा। असाता वेदिनी की उदीर्णा का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्षतः अंतर्मूर्त से अधिक 33 सागरों प्रमाण है। ये नारकी जीवन की अपेक्षा है, कंटिन्यूअस असाता का ही उदय है उनके, क्योंकि सातवीं पृथ्वी में प्रवेश करने से पूर्व पहले भी अंतर्मूर्त लेना और पश्चात अंतर्मूर्त मात्र काल तक असाता वेदिनी की उदीर्णा पाई जाती है। यानी वहां तो कंटिन्यूअस है ही है, वहां जाने के पूर्व और आने के पश्चात भी उसी की उदीर्णा है। हास्य व रति का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास है। हाँ, फिर भी बीच में वो ऑप्शनल हो जाएगी ना, एकाध समय तक वो भी हो जाएगा, जो कुछ है। कहाँ गया, अरति और शोक का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्षतः अंतर्मूर्त से अधिक 33 सागरोपम प्रमाण है। वहां तो हास्य रति का उदय ही नहीं है, वो तो शोक रति का ही है। मिथ्यात्व के उदीर्णा काल की प्ररूपणा में 3 भंग है, उनमें जो सादी सपर्यवसित, जिसको आदि भी है और अंत भी है, ये कौन सा मिथ्या दृष्टि होगा, सादी मिथ्या दृष्टि, उसका काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। क्योंकि सम्यक में से मिथ्यात्व आया, एक अंतर्मूर्त में वापस चला गया, सम्यक्ति हो गया, ऊपर के गुणस्थानों में चला गया तो उसका अंतर्मूर्त जगन्य सिद्ध हुआ और मिथ्यात्व में आया, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटका मिथ्यात्व में और फिर अंतिम भव में मोक्ष चला गया, इसलिए उपार्ध पुद्गल परिवर्तन कहा। सम्यक्त्व प्रकृति का काल, जघन्य से अंतर्मूर्त, सम्यक प्रकृति का काल यानी सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो क्षोभशम सम्यक्त्व है, तो एक अंतर्मूर्त तक सम्यक दर्शन रहा और फिर वापस वो मिथ्यात्व में चला गया कहो या फिर तीसरे में से जाकर फिर पहले में चला गया जो कुछ है, तो उसका जघन्य काल एक अंतर्मूर्त हुआ। औपशमिक का भी होता है ना एक अंतर्मूर्त, हाँ मिनिमम कहो मैक्सिमम कहो एक ही अंतर्मूर्त है, दोनों का द्वितीय उपशम का भी यथा योग्य अंतर्मूर्त है, एक शायिक का ही साधी अनंत काल होगा, शायिक का क्षोपशम का मिनिमम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम 66 सागर। देखो सम्यक तो प्रकृति का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से आवली से कम 66 सागरोपम, क्योंकि वो अंतिम है ना वो आवली वाला, यानी वो उसके बाद यानी अभी उसका शायक होने वाला होगा तभी वो आवली बाकी रखा उसने। सम्यक मिथ्यात्व का काल जघन्य से और उत्कर्ष से भी अंतर्मूर्त मात्र है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व इन तीनों प्रकृतियों का जघन्य उदीर्णा काल समान है। इसका अर्थ होता है कोई छोटे से छोटे काल तक सम्यक्त्व में रहकर मिथ्यात्व में चला आएगा तो उसका अंतर्मूर्त, कोई सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आकर वापस सम्यक्त्व भी होगा तो उसका अंतर्मूर्त, और तीसरे गुणस्थान का अंतर्मूर्त, तीनों के जो जघन्य काल है वो समान है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट उदीर्णा काल उससे विशेष अधिक है, यानी तीसरे गुणस्थान का भी काल किसी के जघन्य होगा और किसी के उत्कृष्ट होगा परंतु वो यथायोग्य अंतर्मूर्त ही होगा। अनंतानुबंधी क्रोध का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी मान माया और लोभ के भी उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए, वो तो उसका अन्य प्रकृति का उदय हो जाता है। ऐसा अंतर्मूर्त ऐसा तो काल है हरेक का, फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है हाँ, तो जैसे क्रोध में आया है और मरकर देव में चला गया तो देवगति में पहले अंतर्मूर्त तो लोभ का ही उदय होता है, इस तरह से एक समय घटेगा क्योंकि विशिष्ट गति में पहला अंतर्मूर्त में विशिष्ट कषाय का ही उदय पाया जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतिम मुहूर्त, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वो क्रोध अनंतानुबंधी का है चल रहा, मिथ्यात्व में ही लेना पड़ेगा, पहले दूसरे गुणस्थान में ही लेना पड़े। ये मान माया लोभ के भी ऐसा ही है, जैसे अनंतानुबंधी कषायों के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है वैसे ही अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यान चतुष्क के भी उदीर्ण काल की प्ररूपना करना चाहिए। संज्वलन क्रोध का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। इसी प्रकार संज्वलन मान माया और लोभ के उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए। भय और जुगुप्सा का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त प्रमाण है। अब पूछते हैं भय और जुगुप्सा का उदीर्णा काल एक समय कैसे है, उसका समाधान, कारण कि अपूर्वकरण के अंतिम समय में उनका एक समय के लिए वेदक होकर अनंतर समय में अनिवृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त होने पर उक्त प्रकृतियों की उदीर्णा की विच्छित्ति देखी जाती है। ये उदय का विच्छेद होता है ना, भय और जुगुप्सा ऐसी प्रकृतियां है, कैसी है, हाँ उसका उदय होता भी है, किसी को नहीं भी होता। किसी को एक का ही उदय होता है, भय का होगा, किसी को जुगुप्सा का होगा, किसी को दोनों का होगा, किसी को दोनों का नहीं होगा। इसलिए एक समय मात्र उदय है, उसी समय उसकी उदीर्णा होगी और फिर बाद में तो विच्छित्ति हो गई उसकी, नवे में तो उदय ही नहीं है तो उदीर्णा भी रुक जाएगी। नपुसक वेद का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये कैसा होगा? हाँ, एक इंद्रिय में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, परंतु एक समय कैसा घटित होगा? हाँ बराबर है, नपुसक वेद सहित श्रेणी चढ़ा, चढ़कर नीचे उतरते समय सवेद भाग में आया, एक समय तक रहा, तो नपुसक वेद का उदय है तो उदीर्णा भी होगी, और मर गया वहां पर तो क्या होगा? पुरुष वेद में वो देव में जन्मेगा, इस तरह से वो एक समय घटित होगा। उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, ये किसका है काल? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन एक केंद्रीय का अधिक बड़ा काल। स्त्री वेद का जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पल्योपम शतपृथक्त्व प्रमाण है। वही एक समय जो स्त्री वेद सहित श्रेणी चढ़कर उतरा है, एक समय के लिए रहा और मरकर पुरुष वेद में चला गया। और दूसरा उत्कर्ष काल है स्त्री पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, उसमें तीनों गति के हो गए, मनुष्यनी, तिर्यंचनी और देविया। पल्योपम शतपृथक्त्व हो जाते हैं, सब मिलकर है, देविया, मनुष्यनी और तिर्यंचनी सब मिलकर। हम देखते हैं ना कि पूर्व कोटि पृथक्त्व होता है मनुष्यनी में, लगातार आठ हो जाएंगे, तिर्यंचनी के हो जाएंगे, पर लगातार आठ कहेंगे अगर हम लास्ट वाला भूमि में तो नहीं जा सकते, वो समझो वहां से गए देव में, फिर देव में से नीचे आएंगे, वो जो कुछ है बीच बीच में तिर्यंचनी, देवी और मनुष्यनी, ये तीनों के जो कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो सब मिलकर पल्योपम शतपृथक्त्व, ये स्त्री वेद के साथ अधिकाधिक रहने का काल है पल्योपम शतपृथक्त्व। पुरुष वेद का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण है। स्त्रियों में पल्योपम शतपृथक्त्व और पुरुष वेद के साथ रहने का उत्कृष्ट काल सागरोपम शतपृथक्त्व। यानी वो पर्याप्त ही होने चाहिए, लब्धिय पर्याप्तों में तो नपुसक वेद हो जाता है, इसलिए पर्याप्त पुरुष पुरुष पुरुष, अभी उसमें वो संगी के लेना, संगी के लेना, देवों के लेना, मनुष्यों के लेना। नारकायु का उदीर्णा काल जघन्य से एक आवलिकम 10,000 वर्ष, क्योंकि नारकायु ही जघन्य 10,000 वर्ष की है, उसमें एक आवलिकम करना, और उत्कर्ष से आवलिकम 33 सागरों प्रमाण है, सातवें नरक की आयु। इसी प्रकार देवायु के उदीर्णा काल का भी कथन करना चाहिए, देवायु में भी ऐसे ही है, मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम 33 सागर। मनुष्यायु का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय, एक समय क्यों? हाँ विनोद भाई आप कहेंगे, एक समय कैसे घटित होगा? मयंक भाई, देवेंद्र भाई, ख्याल नहीं। देखो कोई जीव सातवें गुणस्थान में है, वहां तो आयु का उदीरक नहीं है, छठे में आया उदीर्णा करने लगा और अभी उसका अवली काल ही शेष रहा बाद में, तो एक समय के लिए उदीर्णा की और बाद में वो मरण वाली अवली में एंटर हो गया, तो आयु की उदीर्णा फिर रुक गई, तो एक समय के लिए की। हाँ वापस कहाँ, छठे सातवा चलता है ना, सातवें से छठे में आए, छठे छठे में वो आयु का उदीरक था, सातवें में गया तो ही आयु की उदीरणा रुक गई, वहाँ भी मरण है। यानी वो सातवें का पूरा काल बिताया, वापस छठे में आए तो उसके मान लेते हम, सोलह की आवली समझी ना, तो सत्रह समय आयु बाकी है, तो एक समय के लिए सत्रहवा समय का वो उदीर्णा की, फिर सोलह समय बाकी रहे आवली वाले, तब उदीर्णा नहीं की और बाद में मर गए। इसमें आया था, इसमें इसी में पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था उसको। छठे गुण स्थान में होती है ना आयु उदीर्णा, होती है छठे तक होती है, आगे सातवें से आगे नहीं होती है। हाँ इसलिए वो वहाँ से शुरू हुई ना उसकी, क्योंकि जन्म के समय से लेते हैं, एक समय में तो कोई मरण नहीं होता के हम वहाँ सोचते हैं। हाँ अभी उत्कृष्ट की देखेंगे, और उत्कर्ष से आवलिकम तीन पल्लोकों में, ये मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल्ले है भोग भूमि वालों की, और वहाँ आवली काल शेष रहता है तब आयु की उदीर्णा रुक जाती है, तो उसकी जन्म से लेकर वो वहाँ तक की उत्कृष्ट उदीर्णा काल कहलाएगा। तिर्यंच आयु का उदीर्णा काल जघन्य से आवलिकम क्षुद्र भव ग्रहण, देखो मनुष्य में क्षुद्र भव इनकी बात नहीं की, क्योंकि वो छठा सातवा गुणस्थान है वहाँ घटित होता है, तिर्यंचों में यह घटित नहीं होगा, उनके तो पांचवे गुणस्थान तक ही है, वहां तो आयु की उदीर्णा चलती ही है, इसलिए जघन्य में उसको आवलिकम क्षुद्र भव ग्रहण कहा, और उत्कर्ष से उसका भी तीन पल्ले में आवलिकम, आवलिकम तीन पल्लोपम। नरक गति नाम कर्म, ये आयु की हो गई, अभी गति नाम कर्म की बात चल रही है। नरक गति नाम कर्म की उदीर्णा कितने काल होती है, उसकी उदीर्णा जघन्य से 10,000 वर्ष और उत्कर्ष से 33 सागरोपम काल तक होती है, वो तो अंतिम समय तक होगी, वहाँ ऐसा नहीं कि आवली पहले रुक जाती वगैरह, ऐसी उसमें नहीं, गति नाम कर्म में ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार से देखो, यानी अपनी अपनी जितनी आयु है वो विग्रह गति में भी उसका उदय और उदीर्णा चलता है, और मरण के समय तक अगले ही समय में नेक्स्ट भव में चला गया तो उस विग्रह गति में जो कुछ उसकी आगे वाली गति है उस गति नाम कर्म का उदय और उदीर्णा चलेगी। हम देखते हैं ना, अभी कोई मनुष्य गति का हमारा उदय चल रहा है, उदीर्णा भी चल रही है, तो हमने पूर्व में बांधे हुए कोई तिर्यंच आयु देवायु नरक सॉरी गति आयु ने नरक गति देवगति तिर्यंच गति के परमाणु अंदर पड़े हैं, उसका क्या होगा, वो थ्यूक संक्रमण होता है, एक एक निषेक जो उदय रूप उदय के पास आ गए ना उसके, अभी उसकी स्थिति तो पूरी हो गई, तो मनुष्य गति रूप से परिणामित होकर उदय में आएगी। दूसरे समय में, सेकंड लास्ट नहीं, दूसरा समय, हाँ यानी उदय रूप समय में आते आते चेंज होकर उदय में आते हैं। इसी प्रकार देवगति के भी उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए। तिर्यंच गति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण, अभी यहाँ आयु में तो एक समय घटित हुआ था, हाँ अभी गति नाम कर्म के उदय में क्षुद्र भवन इतना ले क्षुद्र भव ग्रहण, और उत्कर्ष से क्रमशः, अभी देखो हाँ असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल किसके लिए लिया, तिर्यंच लिए, असंख्यात पुद्गल यानी ये सारे जो तिर्यंच में ही रहा, वो कंटिन्यूस तिर्यंच 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 करता रहा, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल, फिर भी ये आदि वाला है कि अनादि वाला है, ये जो उत्कर्ष काल बताया उत्कृष्ट काल, ये आदि हो सकता है, आप क्या कहते हैं, हाँ अनादि कहेंगे तो वो अनादि से अभी तक का काल जो अभी नित्य निगोद में ही पड़े हैं उसमें तो अनंत पुद्गल परावर्तन चले गए, यहाँ असंख्यात पुद्गल परावर्तन की बात है, यानी कोई जीव नित्य निगोद में से बाहर आया है तो और अन्य गति में चला गया है। खाली तरस में आके फायदा नहीं, क्योंकि तीर्यंच गति का वहां शुरुआत होनी चाहिए, तभी हम शादी कहेंगे। तीर्यंच गति में से अन्य गति में चला गया, मनुष्य में चला गया या देव में चला गया, और फिर वापस तीर्यंच गति चालू हो गई, तो उसमें घूमने का काल कितना है? तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन का, उसमें मेजोरिटी तो एक इंद्रियों की ही है, क्योंकि त्रस का काल तो लिमिटेड है वहां पर। तो देखो, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल तथा पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्लोपन, ये किसी के लिए लिया? मनुष्य के लिए, यानी लगातार मनुष्य 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 बनाया, तो पर्याप्त लेने के अपर्याप्त लेने? नहीं, मेरा क्वेश्चन है, मनुष्य गति का उदय किसको है? पर्याप्तों के? हाँ, दोनों को है। तो जैसे हम कहते हैं ना, आठ पर्याप्त के हुए, फिर बीच में वो अपर्याप्त का चला गया, फिर और पर्याप्त के किए, या पुरुष, दोनों लेना है इसमें, दोनों मिलकर मनुष्य गति कहलाएगी। मनुष्य गति दोनों के, मनुष्य गति का उदय है, तो बीच एक आध अपर्याप्त लेते तो संख्या डबल हो जाती है हमारी, हमने देखे थे। अकेले पर्याप्त पर्याप्त करेंगे तो तीन वेद वाले तीन आठ आठ हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, और बीच में एक अपर्याप्त कह ले दे तो 48 हो जाते हैं। इस तरह से दोनों को मिलकर, फिर भी उसको पृथक्त्व कोटि पृथक्त्व ही कहेंगे, पूर्व कोटि पृथक्त्व ही कहेंगे, क्योंकि पृथक्त्व में कैन बी एनीथिंग, 15-16 हो गए तो भी पृथक्त्व कहते हैं, 96-97 हो गए तो भी पृथक्त्व कहते हैं, इसलिए पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्लोपन। लास्ट वाला भाव पल्ले का उसका किया, क्योंकि उसके बाद देवगति का उदय होने वाला है नियम से, भोग भूमि के जीव मरकर देव में ही चले जाते हैं। हाँ, वो तो अंतर्मूर्त है ना, तो पूर्व कोटि में ही उसको गिन लेते हैं। अयोग केवली को छोड़कर शेष शेष ने सभी मनुष्य और मनुष्य ने मनुष्य गति नाम कर्म के उदीरक है। मनुष्य गति नाम कर्म का उदय तो सबको है, अयोगी को भी है, परंतु उदीरणा तेरवे के अंत में रुक जाती है, गति नाम कर्म की भी उदीरणा रुकती, उदय नहीं रुका है वहां पर, तो इसलिए तेरवे के अंतिम समय तक उदीरणा बताई। अब 64 पृष्ठ पर एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीरणा काल, एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय एकेंद्रियों को है, तो एकेंद्रिय की छोटी में छोटी आयु कितनी है? क्षुद्र भव, तो जघन्य कितने हो गए? क्षुद्र भव जितना होगा, तो एकेंद्रिय 64 नंबर का पेज है, एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदीरणा काल, यहाँ अपनी उदीरणा की बात हो रही है, और वो भी उत्तर प्रकृतियों में लगा रहे हैं, उसमें काल देख रहे, उदीरणा का काल जघन्य उत्कृष्ट कितना होता है उसकी बात चल रही है। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदीरणा काल, तो एकेंद्रीय जाति का जिसके उदय है उसी की उसके उदीरणा होगी, तो एकेंद्रीय पर्याय में आया तब से उसकी जाति नाम कर्म का उदय भी है और उदीरणा भी है हर समय। कब तक होगा? एकेंद्रीय पर्याय में है तब तक। तो जघन्य में जघन्य पर्याय कितनी है? क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण। हाँ, इसलिए कहते हैं जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण और उत्कृष्ट से उत्कर्ष से असंख्यात पुद्गल परिवर्तन रूप अनंत काल, ये एकेंद्रीय में भटकने का बड़ा काल है, जिसको हम सादी कहेंगे, सादी से अंत तक। अन्य जाति में से द्विंद्रियादि में से इसमें आया, त्रस में से एकेंद्रीय में आया, तो कितने काल तक अधिक से अधिक एकेंद्रीय में रह सकता है? तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जो अनादि से ही उसमें है उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। एकेंद्रीय का काल उत्कृष्ट जब कहेंगे तो अन्य जाति कर्म में से इसमें आया है, और अभी एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। द्विंद्रिय तीन्द्रिय और चतुरेन्द्रिय जाति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भवग्रहण, उसका अपना अपना क्षुद्र भवग्रहण इतना होगा, और उत्कर्ष से संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। अनंत पुद्गल परिवर्तन, नित्य निगोत तो अनादि से ही वहां है और अभी भी है। उनका प्रश्न ऐसा है, नित्य निगोद में असंख्यात पुद्गल परिवर्तन होगे कि नहीं होगे? वो अनंत पुद्गल परिवर्तन, और वो नित्य जब तक नित्य में वहीं पर रहेगा तब तक उसका चालू है ना, अनादि से चले अनंतानंत पुद्गल परिवर्तन हो जाए। अकेले पुद्गल परिवर्तन की क्या बात करते हो? अभी अंत वाला जो है ना अनंतानंत गुणा भाव परिवर्तन, वे भी अनंत बार हुए। आप कहेंगे उनके अलग भाव हुए नहीं है, ना मनुष्य गति के योग्य हुए ना देवगति के योग्य हुए, तो क्षेत्र भी कहाँ छोड़ा उन्होंने? जो कुछ भले निगोद रूप से अलग अलग क्षेत्रों में जन्मे होंगे, परंतु कहते हैं कि अन्य किसी जीव ने भाव परिवर्तन में जितना काल बिताया, क्या उन्होंने उतना बिताया कि नहीं बिताया? हम तो काल गिनना है ना, देखो कोई जैसे उसके लिए दृष्टांत क्या दिया, देव जो है, तो हम जो दिन रात यहाँ गिनते हैं कितने दिन बीत गए, तो एक दिन एक रात ऐसे हम बीते उसमें 12-12 घंटे का दिन और रात मान लेते सामान्य तरीके से, तो ये हम दिन रात वर्ष सा ये सब गिनते हैं यहाँ पर, तो देव क्या करते होंगे? तो देवों का जो काल हम बता रहे हैं, हम अपनी अपेक्षा से उनका काल बता रहे हैं। हमारे जितने 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 8 दिन वहाँ जाकर वो पूजा करते कहते, तो देवों में तो कोई दिन रात का भेद ही नहीं ना, दिन रात का भेद तो हमारे यहाँ है। ये दो वो घूमने सूरज, घूमने वाले सूरज तो ढाई द्वीप में है, बाहर तो जो जहाँ स्थित है वहीं पर स्थित है, और जहाँ अंधेरा है वहाँ पर अंधेरा ही है, नहीं समझे आप? सूर्य चांद बहुत सारे हैं, आगे आगे द्वीप और समुद्रों में तो बहुत सारी संख्या उनकी बढ़ती चली जाती है, परंतु वो घूमने वाले नहीं, प्रदक्षिणा नहीं करते मेरु की। तो यहाँ सूर्य घूमता है तो यहाँ दिन और रात का जो कुछ सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, अभी ढल गया सूरज, ऐसा जो हम कहते हैं, तो ये मनुष्यों में होता है, कर्मभूमि में, ढाई द्वीप में कहो ना, हाँ ढाई द्वीप में, जो ये ढाई द्वीप में आ गई, बीच वाले जो असंख्यात द्वीप समुद्र है वहाँ की बात नहीं है।
और अंतिम में कर्म जो भूमि है
स्वयंभू, वहाँ भी फिक्स हो गए ना सूर्य तारे से, सब फिक्स है ढाई में। रात दिन भले होगी, पर जहाँ सूर्य वहाँ दिया उजाला होगा, फिर उसके बीच में अंतर भी उतना होगा ना, जो कुछ यथा योग्य हो। हाँ ये ब्लैक होल्स वगैरह है ना, पूरा अंधेरे का पट्टे के पट्टे ऊपर तक, ऊपर के स्वर्ग तक, स्वर्ग में तो ये जो अंधेरे के पट्टे है ना ऊपर तक फैले हुए है ब्रह्मचर्य। अभी वो जाते हैं कहीं विहार करने जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, तो समय दृष्टि तो जीव तो निशंक चले जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि उनके पूछ पकड़ कर चले जाते, पूछ पकड़ कर आने उनको साथ लेकर, जैसे हम बच्चा माँ का हाथ पकड़ पकड़ जाता है ना डरता है, वैसे ये आया है ना अंधेरे के पट्टे होते हैं। अभी क्या करिए, हमें तो सारा ये इमेजिनेबल बांटता है लगता है, इमेजिनरी। और फिर साइंस वाले कहेंगे नहीं ब्लैक होल्स होते तो हम बिल्कुल जी हुजूर मान लेते। वो तो अवकाश में है ना, हाँ वो भी ब्लैक होल्स किसको, उनका कुछ अलग ही है, उसके अंदर वो तो, हाँ ये अंधेरे के पट्टे होते हैं तो बीच बीच में, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचते हैं वहाँ बीच में होते हैं। चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे, पहले उदीर्ण करेंगे बाद में उधर पहुंचेंगे। देखो पंचेंद्रिय जाति की पढ़ेंगे तीसरी लाइन अंत में, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण, क्योंकि कोई पंचेंद्रिय पर्याय में आता है तो लब्धि अपर्याप्त का भव करके वापस अन्य में चला जाएगा, अन्य इंद्रियों में, चतुर इंद्रिय में या एक इंद्रियों में चला जाएगा, तो एक उसका एक क्षुद्र भव ग्रहण कहलाएगा। अपना अपना लगातार लगातार द्विंद्रिय में रहने का काल, लगातार तीन्द्रिय में रहने का काल, ऐसा उसी को वो जाति नाम कर्म का, हाँ हर एक का सबका मिलकर संख्या हजार हो जाएगा। ये पंचेंद्रिय का उत्कर्षतः पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक हजार सागरोपम प्रमाण है। मनुष्य की अपेक्षा हमने पूर्व कोटि पृथक्त्व देखा था, अब यहाँ तो पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय जाति संगी भी है असंगी भी है, मनुष्य है तिर्यंच है देव है नारकी है, पंचेंद्रिय जाति है ना, इसलिए उसको लिया। देखो द्विंद्रिया से लेकर सबको लेते हैं साथ में तो 2000 होता है ना, 2000 सागर। अकेले पंचेंद्रियों में लगातार पंचेंद्रियों में भटकने का काल 1000 सागर और अधिक पूर्व कोटि पृथक्त्व प्लस 1000 सागर और पूरे ही द्विंद्रियादि यानी त्रस में भटकने का काल साधिक 2000 सागर। हाँ ना, वो सब उसमें आ गए, 1000 सागर आ गए, 1000 सागर है उसमें, नारकी भी आएंगे देव भी आएंगे। पूर्व कोटि तो कहाँ लगे अभी, वो तो संख्यात है, पल्ले भी उससे बड़ा है, आगे बढ़ेंगे अभी। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, कैसे होगा आगे पढ़कर बताना। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्ण है ना, उदय एक समय के लिए रहा, आहारक बनाया उसने शरीर, वापस लौटा, जैसे हमने अभी आयु की उदीर्णा में देखा था ना, तो वापस लौटा और फिर मूल शरीर में आया, तो वो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय उदीर्ण चालू हो गई और वहां मरण हुआ। देखो पढ़ेंगे हम इसमें, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया कर मूल शरीर में प्रविष्ट होकर एक समय औदारिक शरीर की उदीर्णा करने के पश्चात द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर जो विग्रह को प्राप्त हुआ है। विग्रह को क्यों प्राप्त कराए उसको, मोड़ वाले ही जो है ना, किसी भी शरीर नाम कर्म का वहां उदय, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है वहां पर, वो तेजस कर्मण को भूल जाओ, उसके उपर्युक्त काल पाया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट उदीर्णा काल से क्या मतलब है, औदारिक विग्रह गति के बिना का काल, आहारक का काल, हाँ रुजु गति का यानी आहारक पने का उत्कृष्ट काल है, अंगुल का असंख्यात भाग, आहारक बना रहता है परंतु वो औदारिक शरीर ही धारण करेगा, यानी बीच में वो देव वाला नहीं लेना। वैकिरेक शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि तिर्यंचो या मनुष्यों में एक समय उत्तर शरीर की विक्रिया करके द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है। वहां वैकिरेक शरीर नाम कर्म का उदय बताया है, वो विक्रिया करने वाले जीवों को औदारिक शरीर से जो विक्रिया कर रहे हैं उसको वैकिरेक शरीर नाम कर्म का उदय बताया है। एक वो उदीर्णा कर की बात चल रही है, एक समय उदीर्णा की और दूसरे समय में मर गया,
और शरीर नाम कर्म का उदय
उसके जो कुछ है बीच वाले, क्योंकि आहार ही वर्गणा है ना, परंतु उसके औदारिक की विक्रिया की ऐसा कहने में आता है उसके। हाँ हाँ, वैक्रियक शरीर नाम करो, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जिसकी सत्ता में से वैक्रियक द्विक की सत्ता नष्ट हो चुकी है, ऐसे जीव की विक्रिया नहीं हो सकती। जिसके सत्ता में पड़े हैं वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, वही जीव विक्रिया करते हैं।
तो उसका उदय चल रहा है उस समय।
हाँ, उस समय उसका उदय चलता है, क्योंकि उस जाति के परमाणु नया शरीर बना है ना, विक्रिया वाला शरीर बना है उसने। ग्रहण हो रहा है ना, ग्रहण हो रहा है। हाँ हो रहा
है,
परंतु वो अंतर्मूर्त के लिए उसका ग्रहण होगा। हाँ हाँ, उसका अनहार रहेगा। हाँ, सूक्ष्म औदारिक वर्गणा। हाँ, परंतु फिर भी उसको जो वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय हो तो, क्योंकि उस शरीर को भी औदारिक ही कहलाया। अभी हमारे जो पुस्तक हो ना, 14वीं पुस्तक में हमने देखा था उसको, विक्रिया करने वाले को भी वो औदारिक ही शरीर होता है।
ये उसी काम आएगा, औदारिक शरीर की।
और योग भी उसको औदारिक का योगी कहा था, परंतु फिर भी वो वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होना चाहिए वहाँ पर। हमने देखा था ना, वो एकेंद्रीय में चला जाता है और उसकी उद्वेलना हो जाती है जिसके वैक्रिक वैक्रिक अंगोपांग की, तो उसके ये नहीं पाया जाता, विक्रिया नहीं होती उस जीव के। देखो इसको फिर पढ़ते हैं। ये उसका कारण बता रहे हैं कि वैक्रिक शरीर का उदीर्णा काल जघन्य एक समय है, क्योंकि तिर्यंचो या मनुष्यों में एक समय उत्तर शरीर की विक्रिया करके द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है। उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 33 अग्रोपरम प्रमाण है। ये किसके है? रेगुलर वैक्रिक शरीर वाले के, देवनार के साधिक 33। अच्छा, विक्रिया में मरण किया साधिक 33 अग्रोपरम। आहार शरीर नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से वे उत्कर्ष अंतर्मूर्त मात्र है, क्योंकि आहार शरीर को उत्पन्न करने वाले जीव का अपर्याप्त काल में मरण संभव नहीं है। यानी उसका उदय हुआ है तो अंतर्मूर्त के पहले एक समय में तो वो शरीर नाम कर्म का उदय मिट नहीं जाएगा, क्योंकि आहारक मिश्र जो काल है वहाँ शरीर पर्याप्ति होने का काल, जिसको आहारक मिश्र का योग कहलाते हैं, तो वहां उसका मरण नहीं होता, उसका काल भी अंतर्मूर्त है। वो जघन्य हुआ, पूरा आहारक शरीर बनाया चला गया आया, उसमें भी अंतर्मूर्त में भी जघन्य उत्कृष्ट वेरिएशन है, इसलिए उसका उत्कृष्ट समझना। जैसे इन तीन शरीरों के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है, वैसे ही उनके अंगोपांगों की भी उदीर्णा काल की प्ररूपना करना चाहिए। यानी औदारिक शरीर के उदीर्णा के साथ अंगोपांग का भी होगा। विशेष इतना है कि औदारिक शरीर अंगोपांग का उदीर्णा काल उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 3 पल्योपम प्रमाण है। ऐसा क्यों कहा? हाँ, आपका कहना है कि रुजुगति से जाएगा तो ही अंगोपांग का कंटिन्यूस रहेगा, परंतु अंगोपांग का उदय किसके पाया जाता है? पंचेंद्रिय को। आप क्या कहते हैं? एक इंद्रियों को छोड़कर बाकी सब, हाँ, उनके अंग और उपांग पाए जाते हैं। तो इसमें द्विंद्रिया से आगे और रुजुगति से जाना चाहिए मरकर। तो क्योंकि हमने देखा था ना, एक इंद्रिय में जो है औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म चलेगा, तो केवल आहारक रहा इतना ही पा देखा हमने। अब यहाँ द्विंद्रिय से लेकर आगे त्रस होना चाहिए, क्योंकि त्रसों के ही औदारिक शरीर अंगोपांग का उदय पाया जाता है। विग्रह गति में नहीं होता है, इसलिए बिना विग्रह वाली रुजु गति होनी चाहिए, तभी अंगोपांग का कंटिन्यूस उदय होगा। तो ये त्रसों में ये होगा, तो उसके लिए उत्कर्ष से कितना हो गया, पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम प्रमाण। मनुष्य और तिरंचों में लेना है, दोनों में मिलाकर 2000 सागर में तो हम वहां तो अपर्याप्त तो भी देते, और त्रस में देवनार की भी लेते हैं। हाँ, अभी अकेला अंगोपांग का एक एक का लेना है, औदारिक अंगोपांग का लेना है, वैकिरिक अंगोपांग का लेंगे तो उसमें तो अधिक से अधिक 33 सागर ही घटित होगा। कंटिन्यूअस तो वैकिरिक वैकिरिक नहीं होता, बीच में गैप पड़ेगी। तो आहारक पने से रहने रहेगा वो आहारक, है ग्रहण करने वाला, आहार वाला, रुजु गति से जाने वाला, और फिर मनुष्य तिरंचों में भ्रमण करेगा तो ही घटित होगा। इसलिए यहाँ पूर्व कोटि बाद में तो देव में चले जाए तो वैकिरिक अंगोपांग का हो जाएगा, इसलिए ब्रेक होगा। इसलिए उत्कृष्ट काल घटित करने के लिए लास्ट भव उसका पल्ले वाला लिया, भोग भूमि वाला। जैसे पांच शरीरों के उदीर्णा काल की प्ररूपना की गई है, वैसे ही उनके बंधन और संघातों के उदीर्णा काल की भी प्ररूपना करना चाहिए। ये पांच शरीर अभी तो हमने यहाँ तीन देखे, तेजस और कार्मन शरीर के क्या होता है, उसका उसका उदय का उत्कृष्ट काल कितना है? हमेशा ही रहेगा, अनादि से है, कब तक रहेगा?
इसका जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा।
उदीर्णा 13वें के अंत तक होती है, बाद में उदय है, उदय 14वें वाले को है, उदीर्णा 13वें में विच्छित्ति हो जाती है 13वें के अंत में। और तेजस कार्मण के अंगोपांग का क्या होता है? अंगोपांग नहीं, ये तो तीन ही शरीर अंगोपांग है, पांच नहीं है। हाँ, ये बंधन और संघात नाम की जो प्रकृतियां हैं वो अपने अपने शरीर नाम कर्म के साथ वो भी उदय रूप उदीर्णा रूप होती है। अब संस्थान की बात, समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है। देखो संस्थान में भी एक समय घटित किया, कैसे? क्योंकि अविवक्षित संस्थान के साथ उत्तर शरीर की विक्रिया करके विवक्षित संस्थान वाले मूल शरीर में प्रविष्ट होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त होकर संस्थानांतर को प्राप्त हुए जीव के एक समय मात्र काल पाया जाता है। संस्थानांतर यानी अन्य संस्थान। तो इस तरह से समचतुरस्र का एक समय घटित हो जाता है। उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है। ओहो, देवों में तो समचतुरस्र संस्थान पाया जाता है और मनुष्यों में भी पाया तो जाएगा ही, और नारकियों में तो हुंड संस्थान होता है, तो नारकियों को तो यहाँ लेना ही नहीं बीच में, तो देव नारकी के भव चलते रहेंगे, तिरंचनी द्विंद्रिय भी नहीं हो सकते। पंचेंद्रिय तिरंचों में कौन सा होता है? पंचेंद्रिय में होगा। हाँ, 163 सागरोपम मनुष्य तिरंचों के और देवों के भव होते रहेंगे उत्कृष्ट संस्थान के साथ, और वहां भी रुजु गति से जाना चाहिए। विग्रह वाले गति में संस्थान नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां तो अनुपूर्वी का उदय होता है। देखो फिर पूरा पढ़ेंगे हम, देखो क्या कहते हैं। उसका उत्कृष्ट उदीर्णा काल साधिक 163 सागरोपम प्रमाण है। हुंडक संस्थान को छोड़कर शेष चार संस्थानों का उदीर्णा काल, शेष चार कौन कौन से याद है? हाँ, न्यग्रोध परिमंडल, न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, वामन और कुब्जक, तो हुंडक संस्थान को छोड़कर शेष चार संस्थानों का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व मात्र है, क्योंकि कर्मभूमिज पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्यों को छोड़कर अन्यत्र शेष संस्थानों की संभावना नहीं है। अच्छा, यानी यहाँ क्या संभावना कहाँ होती है? संभावना होती ही है, ऐसी बात नहीं। कर्म भूमि वाले तिर्यंच है और मनुष्य है, वहाँ ये अन्य संस्थान हो गए, कौन से? नवग्रह परिमंडल आदि। तो यहाँ भोग भूमि वालों को छोड़ा तो उनके तो समय चतुरस्र संस्थान होगा, तिर्यंचों के भी, देवों के भी समय चतुरस्र संस्थान पाया जाता है, और मनुष्यों में तो होता ही है किसी किसी को। तो ये जो मनुष्यों के भव तिर्यंच भोग भूमि के तो एक ही होगा ना बीच बीच में, फिर बीच में देवों का होता रहेगा, रुजुगति से ये बातें होती रहेगी। तो 163 सागर ये नया है ना, अपने को जाना ही नहीं कभी। एक सौ तिरसठ सागर गिन नहीं सकते, पर अभी उन्होंने बताया ना, जैसे हम सम्यक्तों के साथ देखते हैं कि वो वेदक सम्यक्तों के साथ 66 सागर होता है, और ऐसे भी बीच में एक आया तो 132 हो जाते हैं, परंतु उसकी बात नहीं ना, यहाँ सम्यक्तों की बात ही नहीं है। संस्थान होने के लिए सम्यक्तों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो उत्कृष्ट संस्थान से कंटिन्यूस रहेगा तो 163 सागरोपम प्रमाण रहता है। अभी हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि विग्रह गति के बिना परिभ्रमण करने वाले एकेंद्रियों व विकलेंद्रियों में अन्य संस्थान की संभावना नहीं है। यानी सभी एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय इनके खुंडक संस्थान ही होता है, उनमें अन्य संस्थान ही नहीं पाया जाता। तो संस्थान का कंटिन्यूअस उदय उदीर्णा कब कहलाएगी? रुजु गति से जाएंगे तब, विग्रह वाली गति में संस्थान नामकर्म का उदय नहीं पाया जाता। तो हुंडक संस्थान का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय, एक समय ये सभी संस्थानों में एक समय कैसे घटित किया था? विक्रिया की थी, विक्रिया वाले शरीर को अन्य संस्थान था और फिर मूल में आ गए और एक समय में मर गए, संस्थान चेंज हुआ था ना, विक्रिया वाले शरीर का संस्थान अलग था, हुंडक था, वो हुंडक में से उन्होंने आहारक शरीर बनाया मान लेते हैं, वो समय चतुरस्र होता है, और फिर वापस मूल शरीर में, तो फिर वो हुंडक वाला चालू हो जाएगा। मुनिराज को हो सकता है कि नहीं हुंडक संस्थान? कहाँ तक हो सकता है? केवली को भी होगा ना, उसका बंध विच्छित्ति तो पहले में होगी, उदय विच्छित्ति, आपको उदय विच्छित्ति कहना, बंध की तो पहले में ही होता है, बंध आगे नहीं होता उसका। देखो उदय की विच्छित्ति आपको देखने है ना, तो छह संस्थानों की उदय की विच्छित्ति 13वें में होती, 13वें के अंत में। तीन जो नीचे वाले तीन है वो 7वें तक उदय है, ऊपर वाले का क्या होता है? हाँ, 2 का 11वें तक, वज्रषभ वो उसका कहाँ तक? पक्का के 14वें में। उदय का कार्य जो पहले सहनन बनाए उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जैसे शरीर पड़ा है वहाँ सभी पड़े, शरीर नाम कर्म वगैरह का उदय 13वें में रुक जाता है, वैसे सहनन का भी उदय 13वें में रुक जाता है। शंका, ये जो पूछ रहे हैं ना हुंडक संस्थान, तो अनंत काल की प्ररूपना क्यों नहीं की? कितनी की उन्होंने? अंगुल के असंख्यात विभाग। ये अंगुल का असंख्यात भाग किसके लिए बताया था? नहीं, रुजुगति से जाने वाले, कंटिन्यूस रुजुगति वाले जीवों के। शंका, अनंत काल की प्ररूपना क्यों नहीं की? उसका समाधान, क्योंकि विग्रह गति में रहने वाले जीवों को संस्थान का उदय संभव नहीं है। फिर शंकाकार पूछता है, विग्रह गति में संस्थान के अभाव में जीव का अभाव क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि कोई भी द्रव्य है तो उसका कोई ना कोई आकार तो अवश्य होगा, तो कोई बिना आकार का जीव कैसा होगा वहां पर? ये उसका कहना है। उसका समझ नहीं, क्योंकि वहां अनुपूर्वी के द्वारा रचे गए संस्थान में अवस्थित जीव के अभाव का विरोध है। विग्रह गति में विग्रह हमने कहा ना, पूर्व ही शरीर का आकार कायम रहता है, उसका करने वाला है वहाँ अनुपूर्वी कर्म। अनुपूर्वी अभी मनुष्य जो नारकी हुआ है तो नरक में जाने में मोड़ सहित जा रहा है, तो मोड़ वाले गति में आकार कौन सा है उसका? तो मनुष्याकार है
पहले समय।
मोड़ वाले विग्रह गति में पहुंचने पर उसका कुंडक संस्थान का उदय चालू हो जाएगा और वहां वो वैसा आकार धारण करेगा। अभी कुत्ता मरकर मनुष्य हुआ तो विग्रह गति में क्या होगा आकार उसका?
मनुष्य रहेगा इसका मतलब।
कुत्ता मरकर मनुष्य हुआ, कुत्ते का आकार रहेगा। मनुष्यायु हुई है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है, परंतु वो जो मनुष्य गत्यानुपूर्वी जो है वो पूर्व का आकार करता है। अब ये यहाँ जन्मेगा यानी उसका पहला समय होगा आहार ग्रहण का, तभी उसके वो विशिष्ट संस्थान का उदय चालू हो जाएगा, तो ये नया आकार वहाँ धारण करेगा। ये आगम चक्षु लगाएंगे ना सब कुछ दिखेगी। हाँ देखो, हाँ ये वज्र ऋषभ नाराज की बात करेंगे। वज्र ऋषभ नाराज सहिनन नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर से मूल शरीर को प्राप्त होकर, ये कौन से उत्तर शरीर से हो सकता है? हाँ विक्रिया करने वाला। आप क्या और क्या आहारक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ऐसा कहा है आहारक धारण करके वापस नहीं लाए। हाँ एक समय घटित ही नहीं होगा, आहारक शरीर में कोई सहन ही नहीं होता, तो वहाँ एक समय में मरेगा तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? आहारक शरीर में मरे नहीं मरे उसका सवाल ही नहीं है। आहारक शरीर में वापस आने पर वज्र ऋषभ नाराज का फिर से उदय शुरू होगा। जब तक आहार शरीर का उदय है तब तक किसी भी सहनन का उदय नहीं है। वापस जब सहनन का उदय हुआ मूल शरीर में आने पर, तब एक समय में मर गया, तो एक समय के लिए उदय सिद्ध हुआ। ख्याल में है ये बात? हाँ। वैकृत शरीर में भी सहनन नहीं होता, ये विक्रिया वाला आप कह रहे हैं। देखो वज्र ऋषभ नाराज शरीर सहनन नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय मात्र है, क्योंकि उत्तर शरीर से मूल शरीर को प्राप्त होकर विवक्षित सहनन से एक समय परिणत होकर द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के उक्त काल पाया जाता है। उसका उदीर्ण काल उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक तीन पल्योपम प्रमाण है। ये सभी भोगभूमियों में वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही पाया जाता है। अन्य सहनन तो हमारे लिए अलग अलग होते हैं, परंतु वहाँ तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही होता है
दोनों के लिए, तीन चार मनुष्य दोनों के।
हाँ हाँ दोनों के लिए,
तो संस्थान भी वही है।
हाँ फिर भी ये सहनन है, इसलिए मोक्ष का कोई दरवाजा नहीं, ना नरक का दरवाजा है उनके लिए।
दोनों के लिए होगा, संस्थान और सहनन दोनों के लिए।
पहला भोगभूमि वालों को। शेष पांचों ही सहनन का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय यह करना। संस्थान अलग अलग होते हैं ना उनके, तो
उनके तो अलग अलग
कुभोग भूमि, इसीलिए तो उसको कुभोग भूमि कहा उन्होंने। देखो शेष पांचों ही सेनानों का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। आपका जो कहने ना औदारिक की जो विक्रिया है उसमें अन्य संस्था अन्य सहनन होगा, क्योंकि सहनन अंतर किया ना, विवक्षित से अविवक्षित में चला गया ऐसा कहा उन्होंने। हाँ अन्य संस्थान में चला गया ऐसा कहा उनको, तो विवक्षित सहनन से परिणत होकर कहा उन्होंने, या ऐसा कहते कि वहां सहनन नहीं था और मूल वापस में आया तो उसका एक समय घटित हुआ। विक्रिया के शरीर में अगर हम नहीं लेते, हाँ क्योंकि वो विक्रिया में वो घटित नहीं होता सहनन। नरक गति प्रायज्ञान पूर्वी नाम कर्म का उदीर्णा काल, ये प्रायज्ञान पूर्वी का उदय कहाँ पर होता है विग्रह गति, कितने समय के लिए? अधिक से अधिक दो समय, तीन समय कौन से अनुपूर्वी को होगा? कौन से अनुपूर्वी को पूछा मैंने? हाँ तिरंज गति अनुपूर्वी के लिए। हाँ सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही तीन समय लगते हैं, तीन मोड़ हो सकते हैं, तीन मोड़ की बात है ना। बादर एक इंद्रियों में भी नहीं ली थी, सूक्ष्म एक इंद्रियों में। नरक गति प्रायज्ञान पूर्वी नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से दो समय मात्र है। इसी प्रकार मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी और देव गति प्रायज्ञान पूर्वी नाम कर्मों के उदीर्णा काल का कथन करना चाहिए, यानी दो ही समय लगेंगे, दो मोड़ ही हो सकते अधिक से अधिक, तीसरा मोड़ उनके नहीं होगा। तिर्यक गति प्रायज्ञान पूर्वी नाम कर्म का उदीर्ण काल जघन्य से एक समय उत्कर्ष से तीन समय प्रमाण है। तीन समय है ना, तो तीन मोड़ वाली गति ली, वो विग्रह गति चार समय में कहलाएगी, परंतु उसका अनुपूर्वी का उदय कब तक है? जब तक कारमाण का योग है, अनाहारक है।
लास्ट में फिर अनुपूर्वी नहीं रहेगी।
हाँ लास्ट समय में उसका संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। उपघात नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। हाँ परंतु उपघात नाम कर्म का उदय वहां जाते ही शुरू हो जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ देखा संस्थान नाम कर्म का उदय, वैसे उपघात का भी उदय शुरू होता है। इसलिए उसका जघन्य से अंतर्मूर्त लिया, अंतर्मूर्त यानी वो क्षुद्र भव वाला ले लेंगे, और फिर उत्कर्ष से अंगुल के असंख्यात विभाग आहारक 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 बना उसको लेना, रुजु गति से जाने वाला, यानी उसका उपघात का उदय चालू रहा कंटिन्यूस में, तो उसकी उदीर्णा भी कंटिन्यूस होगी। अनुपूर्वी का विग्रह गति मोड़ वाले गति में ही होता है और वहां पहुंचते ही संस्थान नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है। परघात नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। क्या कहते हैं? फिर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में कहा ना, ये मूल शरीर में, मूल शरीर की पर्याप्ति होती है फिर उसके भी होगा। देखो उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में, हाँ जैसे आहार की भी होती है ना, छह पर्याप्ति होती है, आहारक शरीर की भी छह पर्याप्ति होती है, परंतु जो पर्याप्त जीव है और यहाँ पर्याप्ति कर रहा है तो उसका मरण होगा क्या? नहीं होगा। शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उसका मरण होगा कि नहीं होगा? सभी जीवों की पर्याप्त जीव है और अभी शरीर पर्याप्ति पूरी, यानी उसका परघात नाम कर्म का उदय सभी पूरी होने के बाद अंतर्मुहूर्त में मर सकता है, उसके पहले नहीं मर सकता, परंतु विक्रिया वाला मर सकता है पर्याप्ति के काल में भी। इसलिए कहा उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसके परघात का उदय चालू हो गया। इसलिए मूल शरीर में आने की जरूरत नहीं, वापस लौटने की बात नहीं, विक्रिया वाले ही शरीर में उसका परघात का उदय होगा कि नहीं होगा। हाँ क्योंकि वो उत्तर विक्रिया जो है ना उसकी, जैसे हम आहारक की देखेंगे तो उसमें भी ये सारे उच्छ्वास का उसका उदय उच्छ्वास पर्याप्ति भी होती है, उच्छ्वास का उदय भी होता है, सुस्वर दुस्वर का भी उदय होता है, भाषा पर्याप्ति भी होती है उनके, मन पर्याप्ति होती है, विहार गति होती है, उस शरीर में भी सारा उदय होता है, उसकी उदीर्णा भी होती है, तो उसकी अपेक्षा से उसी को ले लेना है। इसीलिए पर्याप्त होकर कहा है ना, मिश्र अवस्था में मृत्यु नहीं है, मिश्र अवस्था में उदय नहीं, मिश्र अवस्था में परघात का उदय भी नहीं होता है। ये परघात और विहाय गति का उदय शुरू होता है ना वहां पर, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात और विहाय गति का उदय चालू हो जाता है। देखो वहां ही पहुंचते समय क्या हुआ था, कहीं से मरकर आया तो संस्थान का उदय नहीं था वो शुरू हुआ, सहनन का उदय जिसके यथा योग्य है मनुष्य तीरंचों में वो शुरू हो जाएगा, और प्रत्येक या साधारण शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा। ये जो बातें जो पहले नहीं थी, उपघात का उदय चालू हो जाएगा। हाँ तो ये जो सारे उदय नए नए चालू हो जाते पहुँचते ही, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर परघात और विहाय गति का उदय चालू हो जाता है, फिर उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर उच्छ्वास का उदय चालू हो जाता है, भाषा पर्याप्ति पूरी होने पर हाँ सुस्वर दुस्वर का उदय चालू हो जाता है। उदय ने उसकी उदीर्णा, वैसे उसके उदय में ये कार्य बना है भाषा पर्याप्ति का। देखो अभी हम पढ़ेंगे इसको, परघात की बात फिर पढ़ते हैं ऊपर से पांचवी लाइन। परघात नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से एक समय है, क्योंकि उत्तर शरीर की विक्रिया कर पर्याप्त होने के द्वितीय समय में, अपर्याप्त अवस्था में मरा ऐसा नहीं कहा था वहां, पर्याप्त होने के द्वितीय समय में, क्योंकि परघात का उदय होगा तभी तो उसको एक समय घटित करना है, तो बाद में वो दूसरे समय में मृत्यु को प्राप्त हुए जीव के एक समय काल पाया जाता है। देखो हाँ शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, तो जो नया कहीं से मरकर आया हुआ जीव है और वो अभी शरीर पर्याप्ति पूरी हुई है, परघात का उसका उदय चालू हो गया है, वो तो जीव मर नहीं सकता वहां पर। हाँ तो इसकी उसकी बात नहीं, यहाँ पर किसकी बात है, उत्तर विक्रिया करने वाले की है। हाँ तो उत्तर विक्रिया की, जैसे हमें उत्तर विक्रिया नहीं, हम आहारक की बात करते हैं, नहीं परघात का उदय अभी दूसरा शरीर बना रहा है ना, तो दूसरे शरीर बनाने के लिए वहां उसका नया संस्थान उपघात वगैरह का तो उदय चालू हो गया, सहनन का उदय उसको नहीं है, ऐसे ऐसे वो मिश्र अवस्था पार करके शरीर पर्याप्ति पूरी हुई, शरीर पर्याप्ति पूरी हुई तो परघात और विहाय गति दोनों का उदय चालू हो गया, अब ये नया चालू हो गया। मूल की बात नहीं, वो तो रुक गई था, वो परघात रुक गया था, अभी उत्तर शरीर के लिए अभी उसका परघात का फिर दोबारा चालू हो गया उदय, और अभी जो विहाय गति होगी, पहले भले वो अप्रशस्त थी, अभी आहारक शरीर की तो प्रशस्त विहाय गति कहलाएगी। तो यहाँ परघात अभी यहाँ नया फिर दोबारा आहारक शरीर संबंधी जो कुछ परघात का उदय चालू हो गया, वो तो रुक गया था हाँ, क्योंकि इसकी मिश्र अवस्था चल रही थी, अभी यहाँ फिर परघात का उदय शुरू हुआ और एक समय में मर गए। विक्रिया वाला समझो। तो प्रघात उत्कृष्ट अभी देखते हैं, एक तो एक समय कैसा घटित किया वो तो समझ में आया, उसका उदीर्णा काल उत्कर्ष से कुछ कम 33 सागरोपम प्रमाण है। ये कुछ कम 33 सागर क्यों कहा, ये मैंने मैक्सिमम आयु ली है 33 सागर, तो उसमें जो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर इसका उदय शुरू होता है, इसलिए वो कुछ कम कर दिया, लगातार उसका उदय उदीर्णा चल रही है। जैसे प्रघात नाम कर्म के उदीर्णा काल की प्ररूपणा की गई है, वैसे ही उच्छ्वास, ये उच्छ्वास नाम कर्म का उदय उदीर्णा कहाँ से होगी, उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर। प्रशस्त व अप्रशस्त विहाय गति, ये भी प्रशस्त अप्रशस्त जैसे अभी देखा था, एक समय कैसे घटित किया, विक्रिया वाला लिया फिर वापस मूल शरीर में आया, हाँ, और एक समय में वो भी हो सकता है, या वहां पर उदय शुरू हुआ और एक समय में मरा आहारक वाला, तो भी हो सकता है, नहीं तो वापस आने में कंटिन्यूटी रहती है, विहाय गति का है और फिर विहाय गति का चालू रहेगा। सुस्वर और दुस्वर नाम कर्मों के उदीर्णा काल की प्ररूपना करना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग पोजीशन पर उनका उदय चालू होता है, इसलिए जो विक्रिया वाला शरीर बनाते हैं तो उसमें एक समय वाला घटित होता है कि बीच में, विक्रिया में भी घटित कर सकते हैं, या आहारक का सुस्वर था और मूल शरीर में आया, दुस्वर हुआ और एक समय में मर गया, ऐसा भी ले सकते हैं, घटित कर सकते हैं हम उसको। आतप नाम कर्म का उदीर्णा काल, आतप किसके होता है मालूम है, कौन सा एक इंद्रिय, पृथ्वी का है, वो भी बादर पृथ्वी का, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, इतना सब बताना पड़ेगा, अपर्याप्तों के नहीं पाया जाता,
तेज गाय के नहीं होता,
नहीं होता, ऐसा लगता है ना तेज गायकों के होगा ना, इतना आतप हो, पृथ्वी कायिक को ही होता है आतप, बादर पर्याप्त पृथ्वी कायिक, ये आतप और उद्योत नाम कर्म है वो प्रशस्त प्रकृति कहलाती है, और अग्नि और वायु में इतना तो बदतर वो जीव बिचारे, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, आतप उनको एकमात्र उन्हीं को पाया जाता है,
नाम से लगता है तेज का,
हाँ नाम से लगता है कि अग्नि का एक उनको होगा परंतु नहीं है,
क्योंकि आतप और कौन से उद्योग दोनों प्रशस्त प्रकृति है,
हाँ दोनों ही प्रशस्त है,
और वो निकृष्ट ही होनी है, वायु
वायु अग्नि में तो बस वो सारी जो अंदर प्रशस्त प्रकृति है उसकी भी उद्वेलना होती है, हाँ ऐसे वो पर्याय है। आतप नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त, ये अभी ये यहाँ क्षुद्र भव नहीं ये लिया, कितना लिया, पर्याप्त लेना है ना, बादर पर्याप्त को लेना है अंतर्मूर्त, और उत्कर्ष से कुछ कम 22,000 वर्ष प्रमाण है, ये पृथ्वी का एक की उत्कृष्ट आयु है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त जीव के आतप नाम कर्म का उदय संभव नहीं है, इसका आतप और उद्योत का भी उदय कब होता है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है। अब यहाँ पर एक समय तो घटित नहीं होगा क्योंकि ये कोई जीव विक्रिया विक्रिया नहीं करते, क्या उद्योत नाम कर्म का उदीर्णा काल जघन्य से अंतर्मूर्त, ये उद्योत भी किसके होता है, कौन सा तिर्यंश, कौन से, हाँ एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंश पर्याप्त तिर्यंशों के अकेले, मनुष्यों में उद्योत नहीं होता, हाँ ये जुगनू वगैरह में जो चमक होती है ना, हाँ वो मात्र तिर्यंशों में होती है, तो एक इंद्रियों में किसके होती है, हाँ वनस्पति और हाँ चंद्र पृथ्वी कायिक यानी चंद्र विमान यानी पृथ्वी कायिक, और अग्नि और जल वायु को छोड़ो ना, हमने क्या देखा, ये प्रशस्त प्रकृति उनमें नहीं होती है, ना आतप होते ना उद्योत होती है, तो बचे कौन, पृथ्वी जल और वनस्पति, उसमें भी बादर और पर्याप्त होना आवश्यक है।
तीनों को बताओ।
तीनों को पर्याप्त क्यों होना आवश्यक है? क्योंकि वो तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही इनका उदय होता है, अग्नि में नहीं है।
पृथ्वी
जल और वनस्पति। हाँ देखो हो गया समय अपना।
ये आतप और उद्योग जो है वो त्रिंचुकी हो गई इन दोनों।
हाँ आतप एकमात्र पृथ्वी का एक में और उद्योग सभी बादर पर्याप्त त्रिंचों में।
त्रिंच एकादश में आ जाएगी।
त्रिंच एकादश में परंतु अग्निवायु छोड़कर, अग्निवायु को छोड़कर यही रुकते अभी हम। हाँ तो देखो उत्कर्ष से कुछ कम तीन पल्ले प्रमाण कहा ना उन्होंने, यानी भोग भूमि वालों में भी होगा। एक ही भाव लेना है, कंटिन्यूअसली तो है नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक इसका उदय नहीं है। यानी कोई भी जो तिर्यंश को हम ले लेंगे तो उसकी उत्कृष्ट आयु प्रमाण ही लेना है, उसमें कुछ कम।
बट उद्योग से पंचेंद्र तक बोला पड़े।
हाँ तो पंचेंद्रियों की उत्कृष्ट आयु ली ना तीन पल्ले, भोग भूमि वाला लिया तिर्यंश, उद्योत वाला। चलो हम रुकते हैं यहाँ पर। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत होलो। विनोद भाई।